الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو سورة الفرقان کی ان آیات کی ہم تشریح، ترجمہ، خلاصہ تفسیر وغیرہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ضمن میں جو کچھ مضامین آ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی تفصیل سے بات کر رہے ہیں، آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. تو کل یہ جو آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے خلیل کا تذکرہ فرمایا، خلیل دوست کو کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ انسان کے جو دوست ہوتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں. صحیح، صحبت کی وجہ سے بنتے ہیں، صحبت، فائدہ مند صحبت جس میں انسان کو کچھ فائدہ نظر آتا ہے، تو اس سے پھر دوستی بنتی ہے، اور اس دوستی کا تعلق دل کے جذبات سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہوتی، وہ دوستی نہیں ہوتی ہے، ورکنگ ریلیشن شپ یا پروفیشنل جو تعلقات ہوتے ہیں کام سے تعلق رکھنے والے، تو وہ دوستی نہیں کرتی. ٹھیک ہے، تو دوست کیسے بنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بات ہوئی تھی کہ جو ہمارے یعنی اچھے دوست بنے ہوئے ہوتے ہیں طبعی طور پر، نیچرلی، ٹھیک ہے، سب سے پہلے انسان کے جو ہے وہ والدین اس کے دوست ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس کے مخلص ہوتے ہیں، وہ اس کی فائدہ سوچتے ہیں، اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، سب کچھ. ٹھیک ہے، لیکن ایسا ایسا جو ہے وہ دنیا کے دوسرے لوگ بھی پھر اس کے دوست بننا شروع ہو جاتے ہیں جیسے جیسے اس کو باہر والوں سے ایکسپوجر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ جو باہر والے لوگ ہوتے ہیں تو ان میں سے کچھ اس کے خیر خواہ ہوتے ہیں اور کچھ اس کے بد خواہ ہوتے ہیں. تو جو بد خواہ ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنی دوستی کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور خیر خواہوں کی دوستی کے اوپر اپنی دوستی کو غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے پھر وہ مختلف حربے، ہیلے، بہانے استعمال کرتے ہیں کہ خیر خواہوں کے بارے میں اس کے دل میں بدگمانی پیدا کرنا، خود جو ہے وہ ایسے ٹیکٹکس استعمال کرنا تاکہ اس کا اعتماد حاصل کر لیں، ہمدردی کرنا، تعریف کرنا، اور جو ہے وہ بالکل بھی یعنی ججمنٹل نہ ہونا، اپنی خیر خواہی کی بار بار یقین دلانا. تو اس طریقے سے پھر وہ بدخواہ لوگ جو ہے وہ دوستی حاصل کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے جو والدین ہوتے ہیں، خصوصاً جب جہاں تک بچی بات ہو رہی ہے، تو والدین کو جو ہے وہ ان معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنا دوست بنا کر کے بھی رکھیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی تعلیم و تربیت بھی کرتے رہیں. کیونکہ والدین نے ایسا نہیں کرنا کہ جی ہاں بس دوست بنا کے رکھنا ہے، ان کی ہر بری اچھی بات کی تعریف کرنی ہے اور کسی غلط بات کی جو ہے وہ اصلاح نہیں کرنی ہے تاکہ وہ ہمارے دوست رہیں. کچھ لوگ بےچارے ایسے بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں کی ہر اچھی بری کی جو ہے نا انہوں نے بس کرنا ہی، تعریف ہی کرنی ہوتی ہے اور اصلاح انہوں نے کرنی ہی ہوتی ہے. ان کی ذرا اپنے بچپن میں ذرا زیادہ پٹائی ہوئی ہوتی ہے اصل میں. ٹھیک ہے نا، ایسا ہم نے دیکھا ہے، ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ جب وہ چھوٹے تھے تو اوپر سے جو ہے نا وہ ان کے خوب جو ہے وہ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے نا وہ بالکل اس کا اپوزٹ ریئیکشن کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ بالکل سختی نہیں کرنا چاہتے، بالکل ان کو جو ہے نا وہ انہوں نے ڈھیل دی ہوئی ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے انہوں نے اجازت دی ہوئی ہوتی ہے، اور اس نظریے کی بنیاد پر کہ ہاں جی یہ ہمارے دوست بن کے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ کچھ عرصے تک تو دوستی چلتی ہے، لیکن یہ دوستی زیادہ لمبے نہیں چلتی، اور اس سے جو ہے نا وہ اولاد کا بہت نقصان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے والدین جو ہوتے ہیں نا، اسپیشلی جو باپ ہوتا ہے، تو اس کی دوہری ذمہ داری ہوتی ہے، اس نے دوست بھی بنا کر کے رکھنا ہے اپنے اولاد کو، اور ساتھ ساتھ تعلیم اور تربیت بھی کرنی ہے، रोक टोक और इसलाह भी करनी है। अब जाहिर है ये कोई आसान काम तो नहीं है ना, राइट? ये कोई बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल किस्म का काम नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा आपको अकल इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है? और खाली अपनी अकल काफी नहीं होती इन कामों के लिए, बल्कि इन चीजों को सीखना पड़ता है, ठीक है? इन चीजों के लिए जो है वो जरा किताबें भी पढ़नी पड़ती हैं, और बड़ों से मशवरा भी करना पड़ता है, और बड़ों की एग्जाम्पल को फॉलो भी करना होता है, इत्तेबा भी करनी होती है बड़ों की, सही है? तब कहीं जाकर के जो है ना ये काम अच्छे अंदाज से हो पाता है, औलाद की सही तरबियत का काम। ये औलाद की सही तरबियत जो है ना, ये कोई मामूली काम नहीं है, ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं है, ठीक है? और ना कोई ये ऐसा काम है कि ये आप किसी और को आउटसोर्स कर दें कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो चलो मेरे पास ना तो टाइम है ना जो है वो मेरे पास इतनी अकल है और ना मेरे पास जो है वो इतना इल्म है, तो चलो मैं ये आउटसोर्स कर देता हूँ। जैसे ना कम ये गवर्नमेंट के काम होते हैं ना, आउटसोर्स कर देते हैं, गवर्नमेंट सारे काम खुद नहीं कर सकती क्योंकि मसरूफ है बेचारी ज्यादा, राइट? तो फिर वो ना कंपनियों को आउटसोर्स करती है, हाँ भाई तुम जो है ये फलाना ब्रिज बना देना, तुम जो है ना ये सड़क बना देना, तुम फलाना काम कर देना, तुम फलाना काम कर देना। इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग, राइट? अपना काम किसी और के हवाले कर देना। औलाद की तरबियत आउटसोर्स नहीं की जा सकती, सही है? ये खुद करनी होती है और ये फुल टाइम करनी होती है। ये ऐसे नहीं है कि दिन में 2 घंटे कर लिया और बाकी टाइम जो है वो अपने तफरीहात में गुजार दिया, अब बाकी टाइम जो है वो अपने दोस्तों के साथ गुजार दिया, नहीं, ऐसे औलाद की तरबियत नहीं होती है, ठीक है? मुस्तकिल की इसके अंदर फिक्र चाहिए होती है, और इस फिक्र में इतना ज्यादा गर्क होना होता है कि ये फिक्र जो है वो आपके दिल से अपनी औलाद के लिए दुआएं भी निकलवाए, क्योंकि सबसे पहली चीज और सबसे अहम चीज तो होती है अल्लाह ताला से दुआ करनी है। तो इस फिक्र के यानी औलाद की तरबियत के बारे में इतनी फिक्र होगी तभी जाकर के दिल से औलाद के लिए दुआ निकलेगी, ए अल्लाह बस मेरी औलाद की बेहतरीन तरबियत फरमा दीजिए, मुझसे नहीं भी हो पा रही ना तो भी आपसे तो हो, आप तो कर सकते हैं, राइट? मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, अकल नहीं है, समझ नहीं है, इल्म नहीं है, लेकिन ए अल्लाह आप तो कर सकते हैं सब कुछ, ए अल्लाह आप बस किसी तरीके से बंदोबस्त फरमा दीजिए मेरी औलाद की तरबियत के लिए। ऐसे दिल से जो है ना वो टूट के दुआ मांगनी पड़ती है। फिर उसके बाद जाहिर है दुआ के बाद फिर दवा करनी होती है, दवा का मतलब असबाब इख्तियार करने होते हैं, तो वो असबाब के बारे में तो काफी बात कर चुके हैं कि क्या क्या करना चाहिए, ठीक है? तो ये मुस्तकिलन करने का काम है, इसके अंदर वालिदैन को बहुत ज्यादा संजीदगी के साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है, ठीक है? उम्मीद है कि जो वालिदैन हैं इस क्लास के अंदर वो गौर से सुन रहे होंगे और इसके ऊपर फिर आगे जा करके सही से अमल भी करेंगे। तो दोस्ती अगर ये दोस्ती गलत बन गई, दैट्स द एंड ऑफ इट। उसके बाद फिर जो है ना वो आप यानी बस अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं खाली कि अल्लाह उसके इन दोस्तों को जो है वो यानी हटा दे, पीछा छुड़वा दे मेरी औलाद का इन दोस्तों से, और उनको अच्छे दोस्त अता फरमा दे। लेकिन आप फिर ज्यादा तदबीर उसके बाद कर नहीं सकते अगर उनके बुरे दोस्त बन गए तो इस वजह से बुरे दोस्त बनने से पहले बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है कि उनके बने ही ना बुरे दोस्त, ठीक है? तो इस आयत में फरमाया कि जब कयामत के दिन ये जाएगा ना जहन्नुम की तरफ, इसको ले जाया जा रहा होगा, तो उस वक्त जो है वो अफसोस करेगा कि काश कि मैंने ऐसे लोगों को दोस्त न बनाया होता और इन दोस्तों ने मेरे साथ क्या किया कि हिदायत के पैगामात तो अल्लाह ताला मुझ तक पहुंचाते ही रहते थे वन वे और दी अदर, लेकिन ये जो बुरे दोस्त मैंने बनाए हुए थे ना, ये बुरे दोस्त जो हैं वो इन पैगामात के पहुंचने के बावजूद मुझे रास्ते से हटा देते थे। लकद अضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا। अब शैतान, ठीक है, शैतान के बारे में मैं भी आप लोगों को काफी बताया हुआ ना कि ये हर रिबेलियस बागी जो क्रीचर होती है उसको शैतान कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि जिन्नों के अंदर सबसे बड़ी तादाद में बागी होते हैं, इवन इंसानों से भी ज्यादा है। वैसे तो हमें लगता है जैसे इंसानों से ज्यादा कोई हो नहीं सकता, लेकिन बगावत में जिन्नों की तादाद जो है वो इंसानों के मुकाबले में फिर भी ज्यादा है, ठीक है? तो इस वजह से ये लफ्ज उमूमी तौर पर जिन्नों के लिए बोला जाता है, ठीक है? इबलीस के लिए सबसे पहले बोला जाता है और उसकी फिर पूरी टीम है। तो ये इंसान के लिए जो है वो दगा देने वाला कि ये दिखाता कुछ है और करता कुछ है, धोखा दे जाता है ना, ठीक है? वैसे तो इस दुनिया के अंदर धोखा देता है, सही को गलत बना के पेश करता है, गलत को सही बना करके पेश करता है, फिर जब उसकी बात मान देते हैं तो फिर ये आपके आपको जो है वो यानी सपोर्ट नहीं करता कि चलो इसने मेरी बात मानी है तो फिर मैं इसको जरा यानी फिर इसका हाथ पकड़ करके इसको मुश्किल से बचाऊं, नहीं, वो मुश्किल से नहीं बचाता बल्कि आपको मुश्किल के अंदर गिरता हुआ देख करके खुश होता है। और जब आप सबसे बड़ी मुश्किल के अंदर गिरफ्तार होंगे यानी कयामत के दिन, तो उस वक्त तो ये झूठा मुंह झूठा हमदर्दी भी नहीं करेगा, झूठी हमदर्दी भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो शैतान का कॉन्सेप्ट है ना, ये कल आपको बताया था कि जितनी बुराई वाले ख्यालात हमारे दिल में आते हैं, ठीक है, तो इनको हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई कोई ख्याल आया, जैसे कोई ऑटोमेटिकली कोई काम हो रही हो, कोई काम हो रहा हो, राइट, बगैर किसी फाइल के कोई फेल हो रहा हो, हम ऐसे तस्वर करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि शैतान मेरे ऊपर असर नहीं कर सकता, मैं शैतान से महफूज हूं। या ये कि शैतान जो है ना वो दूसरों पर तो दूसरों के साथ तो लगा हुआ है, दूसरों के ऊपर तो वो असर करता है, लेकिन मेरे साथ कोई कोई शैतान का अमल नहीं हो सकता। इस वजह से ना हम मजहूल बात करते हैं कि मुझे ख्याल आया, हम ये नहीं कहते कि शैतान ने मेरे दिल में ख्याल डाला, हम ये नहीं सोचते कि शैतान भी है जो कि मेरे नुकसान के दरपे है, जो कि लगा हुआ है मुस्तकिल मेरे पीछे, हमें इसका ख्याल ही नहीं रहता। तो इस वजह से ना शैतान का मामला ऐसा है कि शैतान हमें मुख्तलिफ तरीकों से नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, मुख्तलिफ वार होते हैं ना इसके कि वो यानी कभी किसी तरीके से कि मौसीकी में मुबतला कर दे, कभी जो है वो डांसिंग में और यानी मखलूत महाफिल के अंदर मुबतला कर दे, कभी जो है वो फिल्में देखने में मुबतला कर दे, कभी जो है वो ड्रामे देखने में, ठीक है ना, कभी इस्लामी ड्रामे देखने में मुबतला कर दे। कल अर्तुगरल मनहूस के बारे में भी बात हुई थी, इस ड्रामे सीरियल को मैं कह रहा हूँ, बाकी उस वो शख्सियत का मुझे पता ही नहीं कौन होता है ये, ठीक है, तो ये जो इस्लामी ड्रामे होते हैं इनके अंदर मशगूल कर दे, कभी जो है वो किसी और चीज के अंदर, रमजान ट्रांसमिशन के अंदर, या कभी किसी चीज के अंदर, क्रिकेट के मैच में तो बास्केटबॉल के मैच में तो कोई फुटबॉल के मैच में तो कभी किसी और चीज के गेम के अंदर मशगूल कर दे, ठीक है, ये तो उसके मुख्तलिफ वार होते हैं ना, ठीक है। लेकिन अब हम आपसे पूछते हैं जो कम से कम पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे, राइट, क्विज, कि शैतान का सबसे खतरनाक और बड़ा वार क्या होता है, सबसे खतरनाक और बड़ा वार शैतान का इंसान के ऊपर क्या होता है, ठीक है, आप बताएं जरा, जब जब तक यहाँ पे किसी ने कुछ सवाल पूछा है प्राइवेटली तो वो पढ़ते हैं। क्या कहा है कि यूजुअली लोग इस वर्ड बड़े, हमारे बड़े को समझते हैं घर के बड़े या रिश्तेदार बड़े लोग, तो मतलब कहना क्या चाह रही मैं समझ में नहीं आई आपकी बात। ईमान को खत्म करना नहीं, ईमान को खत्म करना शैतान का मकसद है, शैतान का गोल है, इस गोल को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए वो मुख्तलिफ वार इस्तेमाल करता है, जैसे मौसीकी में लगा देना, खेलकूद में लगा देना। मैं ही पूछ रहा हूं कि उसके वारों में से सबसे बड़ा वार कौन सा वार होता है जिसके जरिए से वो इंसान को ईमान से महरूम करने का मकसद अचीव करता है, ये पूछ रहे सवाल, ठीक है, तो अल्लाह की याद से गाफिल करना, हाँ ये बहुत बड़ा वार होता है बेशक, अल्लाह की याद से गाफिल करना, जी ठीक है, माशाल्लाह इन्होंने सही जवाब दिया, शैतान अपने आप से गाफिल कर देता है, अपने आप से गाफिल कर देता है, ठीक है, क्या मतलब, बुराई को नेकी की शक्ल में पेश करना, शैतान अपने आप को भुला देता है, जी मियां बीवी को आपस में लड़ा देना, ये भी इसका बहुत बड़ा वार होता है घराने के ऊपर, वो बुराई को अच्छाई के लिबादे उड़ा के पेश करता है, ठीक है, ये सारे जो आपने लिखे हैं तो जिन लोगों ने वार लिखे हैं तो उन्होंने सही वार लिखे हैं, ये इसके बड़े बड़े वार होते हैं, ठीक है, यानी खुद पसंदी में तलाक कर देना, मियाँ बीवी को आपस में लड़ा देना, बुराई को नेकी बना करके पेश कर देना, ठीक है, मैं सही हूँ ये किसी को एहसास दिला देना बस कि मैं सही हूँ, अल्लाह की याद से गाफिल कर देना, ये तो बहुत बड़ा उसका वार है, अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर देना। जब मर्दों की तरफ से भी थोड़ा पढ़ लेते हैं उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं, ईमान से महरूम कर देना तो इसका मकसद है, मेक अस थिंक ही डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जैक्टली, शैतान को भुला देना। हाँ, शैतान, शैतानी वसाविस, ये तो उसके रोजमर्रा के का वार है। शैतानी वसाविस तो सबसे इसका छोटा वार है, ठीक है, शेख से तोड़ देना। अच्छा, वक्त का जिया उजुब से मुब्तला करना, ठीक है। तो ये सब आप लोगों ने भी उसका अच्छा गुनाह को छोटा छोटा बना के पेश करना, ये सब जो हजरात ने लिखे हैं और खवातीन ने भी लिखे हैं, ये बेशक उसके यानी वार हैं। कुछ छोटे वार लिखती हैं आप लोगों ने, कुछ बड़े वार लिखे हैं, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा वार है ना, वो भी माशाल्लाह कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा है कि शैतान इंसान का ध्यान अपनी तरफ से हटा देता है। अपनी तरफ से मुराद शैतान की तरफ से, क्या मतलब कि उसको ये इस तरीके से घुमाता है, इस तरीके से उसकी जहन के अंदर यानी ख्यालात डालता है कि उसका जहन यानी शैतान का जहन, सॉरी इंसान का जहन शैतान की तरफ से गाफिल हो जाता है, शैतान की तरफ से गाफिल हो जाता है कि शैतान है ही नहीं, शैतान है ही नहीं। तो शैतान है ही नहीं का मतलब क्या बनता है, शैतान क्या है? अल्लाह ताला कुरान में हमें फरमाते हैं, इन्न शैतान लकुम अदुवुन, शैतान तुम्हारा दुश्मन है ना। शैतान तो एक जिन, जिन को कहते हैं ना कि भाई ये जिन शैतान है, ये जो बुरे लोग शैतान है, ठीक है। लेकिन शैतान को अल्लाह ताला क्लासिफाई कैसे करते हैं कुरान के अंदर कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है। तो जब शैतान के बारे में हम सोचना छोड़ देते हैं या शैतान से हम गाफिल हो जाते हैं, बेपरवाह हो जाते हैं, तो दरअसल क्या हो रहा होता है, हम अपने दुश्मन से बेपरवाह हो जाते हैं, हम अपने दुश्मन से बेपरवाह हो जाते हैं, सही है। और जब कोई अपने दुश्मन से बेपरवाह हो जाए तो फिर क्या करता है, क्या होता है फिर उसके बाद, ये भी जरा आप ही बता दें। जब कोई अपने दुश्मन से बेपरवाह हो जाए तो फिर क्या नतीजा निकलता है फिर उसकी जिंदगी में, शैतान अपने आप को बुला देता है। जी, क्या नतीजा निकलता है उसकी जिंदगी में, बस कोई एक दो जवाब दे करके फिर अटैक होता है। नहीं, अटैक तो वैसे ही होता है, बेपरवाह होने के बाद यानी बगैर भी अटैक होता है, दुश्मन जीत जाता है गफलत में, दुश्मन आसानी से अटैक कर पाता है, बर्बाद हो जाता है, मारा जाता है, अपना डिफेंस नहीं कर पाता। जी, अपना डिफेंस, ठीक है ना, जब दुश्मन है ही नहीं कोई तो फिर डिफेंस सिस्टम की जरूरत नहीं है आपको, राइट, सिस्टम ऑफ डिफेंस की जरूरत नहीं है। इसकी हम मिसाल देते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा, राइट, ये कितना बड़ा इनका बॉर्डर है ना, पता नहीं कितने हजार मील लंबा इनका बॉर्डर है, लेकिन कनाडा अमेरिका का दोस्त है, अमेरिका कनाडा का दोस्त है ना। अब जाकर के देखें जरा वहां पे अमेरिका और कनाडा का जो बॉर्डर है ना, इसके ऊपर कोई बार्ड वायर्स नहीं होते, कोई चेक पॉइंट्स भी नहीं, रिकनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, रिकनेक्ट हो गया। तो कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर ऐसा है कि लोग जो है ना कनाडा में या अमेरिका में जो रहते हैं तो ना जॉगिंग करते हैं ना, तो जॉगिंग करते करते ना कभी वो कनाडा की तरफ चले जाते हैं, फिर वो वापस अमेरिका की तरफ आ जाते हैं, राइट। उसी तरह साइकिलिंग करते हुए, हाइकिंग करते हुए लोग जो है ना वो कनाडा में अगर रहते हैं, वो हाइकिंग करते करते अमेरिका में आ जाते हैं और अमेरिका से वापस फिर कनाडा में चले जाते हैं, राइट। इस किस्म के बॉर्डर्स हैं। क्यों है भाई ऐसे बॉर्डर्स? वहां पे कोई डिफेंस सिस्टम ही नहीं है, वहां पे कोई जो है वो मिलिट्री खड़ी नहीं होती, कोई गार्ड्स खड़े नहीं होते, कुछ भी नहीं होता वहां पे। क्यों? इसलिए कि दो दुश्मनी नहीं है, दोस्ती है। यही मामला आप हमारे मुल्कों में देख लें, हमारे दो मुल्क जो है जिसके स्टूडेंट्स क्लास के अंदर ज्यादातर मौजूद है, राइट। तो यहाँ पे जो बॉर्डर है तो वहां पर तो फिर आपको पता है ना क्या होता है, ठीक है ना। क्यों भाई इतनी डिफेंस? इतना जो है वो रडार लगाए हुए हैं, इतना जो है वो एयरफोर्स भी अलर्ट रहती है, नेवी भी अलर्ट रहती है, और जो है वो सब सबके सब जो है वो वहां पे तमाशे होते रहते हैं घर वक्त। क्यों? इसलिए कि दुश्मनी है, ठीक है ना, किसी वक्त भी वहां से वार आ सकता है, किसी वक्त भी वहां से जो है वो कुछ हो सकता है, ठीक है। तो जब इंसान अपने दुश्मन को भूल जा, या ये कि दुश्मन नहीं है भाई, तो फिर आप क्या करते हैं, यू लेट योर गार्ड्स डाउन, यू लेट योर गार्ड्स डाउन, आप अपने डिफेंस सिस्टम को खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। अगर वाकई दुश्मन नहीं है जैसे अमेरिका और कनाडा, तो फिर तो मामला कोई नहीं, मसला कोई नहीं होता। लेकिन दुश्मन अगर है, राइट, दूसरी तरफ दुश्मन है, लेकिन उस दुश्मन ने आपको धोखा दे दे करके, राइट, आपको बेवकूफ बना बना करके अगर ये बावर करा दिया है कि मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूं, तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, आप तो अपने डिफेंस सिस्टम के ऊपर स्पेंडिंग जो है वो खत्म कर देंगे, आप उसकी तरफ से गाफिल हो जाएंगे, राइट, अपनी तवज्जो को फिर आप तरक्कियाती कामों की तरफ डाल देंगे, है ना। फिर क्या होता है, तरक्कियाती कामों की तरफ तरफ आप अपना सारा का सारा बजट लगा देते हैं, राइट, अपने मुल्क के अंदर सड़कें बनाते हैं और बिल्डिंग बनाते हैं और अस्पताल बनाते हैं और ये बनाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है ना। अपनी आर्मी के ऊपर, अपने बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर आप खर्च करना छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन दुश्मन तो उधर है ना, तो दुश्मन जो है ना फिर तमाशा देखता है कि हाँ भाई करने दो उसको जितनी कर रहा है ये तरक्की, ठीक है ना। फिर वो जो है ना वो एकदम किसी दिन अटैक करता है, और अटैक करके वो जितनी आपने तरक्याती काम सालों के अंदर इकट्ठे किए थे ना, वो सारे के सारे तरक्याती कामों को मिलिया मेट कर दे रहा है, क्योंकि दुश्मन तो था भाई, आपके भूल जाने की वजह से दुश्मन गायब तो नहीं हो गया, हवा तो नहीं हो गया, राइट, इवेपोरेट तो नहीं हो गया दुश्मन आपका, वो तो है वहां पर, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो इस वजह से ना शैतान का सबसे बड़ा वार ये होता है कि वो इंसान को भुला दे कि वो है, उससे बचने की भी कोशिश करनी थी, बचने के इंतजाम भी करने थे, ठीक है ना। तो इस ये जो उसका धोखा होता है ना, ये सबसे खतरनाक धोखा होता है। इसी वजह से हमारे रब ने इस शैतान का तस्करा अपने कुरान के अंदर बार बार किया है, बार बार किया है, राइट। माजी का भी तस्करा किया, पहले दिन से जो ये हमारा दुश्मन बना है, उस वाकये का जो आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक का वाकया है, ये कुरान के अंदर शुरू से लेकर के आखिर तक बार बार रिपीट होता रहता है। फिर उसके बाद इस शैतान ने पिछली कौमों को कैसे बर्बाद किया, इसका भी तस्करा बार बार आता रहता है, राइट। यानी माजी करीब के तस्करे भी आते रहते हैं, माजी बरीद के तस्करे भी आते रहते हैं, और हाल के तस्करे भी आते रहते हैं, कि जब कोई इंसान अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है तो शैतान फिर कैसे उसके गुनाहों को मुजयन करके पेश करता है, और ये करता है वो करता है, और मुस्तकबिल शैतान का तस्करा मुस्तकबिल में भी, कि वकान शैतान लिल इंसान खजूला, ये कयामत के दिन ये शैतान जो है वो हमदर्दी भी नहीं करेगा, कयामत में भी शैतान के तस्करे आते रहते हैं, राइट। माजी, हाल, मुस्तकबिल, मुस्तकिल शैतान का तस्करा कुरान के अंदर, और हदीस तो भरी पड़ी हुई है शैतान के तस्करों से, कैसे कैसे इसने बनी इसराइल के आबिदों को जो है वो बर्बाद किया, ईमान से महरूम किया, ठीक है। तो हमें इसको देख करके ना कुछ अकल के नाखून पकड़ने चाहिए कि भाई हमारा एक इतना बुरा दुश्मन मुस्तकिलन मौजूद है, इस दुश्मन से हिफाजत के लिए हमें पूरे एक निजाम की जरूरत है, राइट। जिस तरह से हम दुआ से सारे काम नहीं चलाते ना, हम दवा भी करते हैं, उसी तरीके से ना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से सारे काम नहीं होते, ये दुआ है, शैतान से बचने की दुआ है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुआ के साथ साथ दवाई भी अता फरमाई है, निजाम भी अता फरमाया है। हम क्या करते हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा कोई फिक्र पड़ भी गई ना किसी को शैतान की, तो वो बस आऊज़ु बिल्लाह से समझता है कि सारा काम हो जाएगा, राइट, और उसके बाद जो है वो जो अल्लाह का निजाम दिया था, अल्लाह ने उसकी दवाएं बताई थी, अल्लाह ताला ने उसके लिए जो है वो पूरा एक हमारा अपना इंसानों का सिस्टम बनाया था, तो उससे जो है वो हम कहते हैं हमें कोई जरूरत ही नहीं है इसकी, ठीक है। तो इस वजह से ना फिर हम अपने आप को शैतान के वारों से बचा नहीं पाते हैं, और हम उसका शिकार हो जाते हैं, और फिर वो हमारे जो तरक्याती काम थे, यानी हमारी नेकियां, राइट, हमारे वजीफे, हमारी तस्बीहात जो हमने पायलट किए हुए थे ना, वो फिर ऐसे आता है कि फिर वो हमारे इन तमाम तरक्याती कामों को मिलिया मेट कर जाता है, हमारे सारी नेकियां जो है ना फिर वो जाया करवा देता है किसी ना किसी तरीके से। कोई ना कोई ऐसा कलमा करवा देगा, अल्लाह वालों की दोस्ती अल्लाह वालों की दुश्मनी हमारे दिल में डाल देगा, ठीक है, कि तुम तो इतने नेक हो, इतने जो है वजीफे कर रहे हो, दीन की इतनी खिदमत कर रहे हो, दीन की इतनी जो है वो तुम्हें फिक्र पड़ी हुई है, और ये जो मौलवी लोग हैं ना इन्होंने तो दीन को जो है वो बेच के खा लिया है, इन्होंने जो है ना सारी दुनिया के अंदर जो है वो यानी दीन का हक अदा नहीं किया, दीन की खिदमत नहीं करी, इन्होंने तो कुछ किया नहीं है। तुम हो असल में तहरीकी दीनदार, राइट, तुम तहरीकी, तुम मुहर्रिक हो। ये सूफिया लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं, सूफी किस्म के लोग हैं, बिल्कुल बेकार किस्म के लोग हैं, और ये हैं डंक ऐसे हैं फलाने ढमकाने, ठीक है, तो मदरसों में तो कुछ भी नहीं होता, मदरसे तो ये हैं, इस तरह की सारी बातें डाल के दिल के अंदर इनकी नफरत पैदा कर देता है, राइट। इन उलमाए कराम की, इन मशायख उजाम की जो के दीन की बेहतरीन खिदमत कर रहे होते हैं, हम अंधे होते हैं कि हमें नजर नहीं आ रही होती वो खिदमत, राइट, हम बेअकल होते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रही होती कि वो कैसी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन शैतान जो है ना वो ऐसे आकर के हमारे दिल में उनकी नफरत डालता है, फिर हमारी जुबान से जो है वो इनके खिलाफ नफरत के बोल कहलवाता है, कोई नफरत के काम करवा देता है, जिससे क्या होता है कि हम अल्लाह ताला की दुश्मनी मोल लेते हैं, अल्लाह ताला की दुश्मनी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी के अंदर हमें बता दिया है कि जो मेरे वली के साथ दुश्मनी करेगा तो वो मेरा दुश्मन, मैं उसके खिलाफ ऐलाने जंग कर देता हूं, राइट, ऐलाने जंग। अब जो अल्लाह ताला ने किसी के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया इस हरकतों की वजह से, तो अब उसकी तस्बीहात कोई काम आएंगी, उसके उसकी नमाजें, उसकी नफलें, उसके तहज्जुदें, राइट, उसके नफली रोजे, उसके सदकात, उसके हज उमरे, ये उसके किसी काम के रहेंगे नहीं, किसी काम के नहीं रहेंगे उसके, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से उसके खिलाफ ऐलान जंग हो चुका है, ठीक है। तो अब वो तरक्याती काम करे चला जा रहा है, करे चला जा रहा है, करे चला जा रहा है, उधर से उसके दुश्मन ने ऐसा वार किया है उसके ऊपर कि हर चीज उसकी जो है ना वो बस जाया होती चली जा रही है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है कि शैतान किस तरीके से हमारे नेक अमाल के बावजूद जो है ना वो हमें बर्बाद कर करके करके छोड़ता है। तो इस वजह से ना हमें अल्लाह ताला बना जो सिस्टम है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को, नेक इंसानों को इस दुनिया में भेजा है कि तुम इनकी इत्तबा करो, फत्तबे सबीला मन अनाब इलैया, हुक्म खुदावंदी है कुरान के अंदर, इनके रास्ते की इत्तबा करो, और अती अल्लाह व अती रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, तुम्हारे दरमियान जो उलुल अम्र हैं तुम उनकी अताअत करो, राइट, अल्लाह की अताअत करो, रसूल की अताअत करो, तुम्हारे दरमियान जो उलुल अम्र हैं उनकी अताअत करो। अब ये उलुल अम्र कौन है, कौन है ये उलुल अम्र, जिनके पास लाठी है वो उलुल अम्र है, तो फिर तो वही उर्दू वाला मुहावरा चलना चाहिए फिर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, राइट। तो अगर लाठी वालों को आप उलुल अम्र कहते हैं तो जितने लाठी वाले दुनिया के अंदर हैं उनकी अताअत लाजमी होगी आपके ऊपर कुरान के हुक्म के मुताबिक, है ना, तो फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला निजाम दुनिया में चल रहा है उसकी इसी वजह से, है ना। तो उलुल अम्र कौन है, उलुल अम्र मिनकुम, ठीक है, ये उलुल अम्र मिनकुम जो होते हैं ये अल्लाह वाले होते हैं, ये दीन शरीयत का इल्म रखने वाले होते हैं, राइट, ये मन अनाबा इलैया वाले लोग होते हैं, जिनकी के हुक्म करने का, जिनके की अतात करने का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। हमारे जमाने के लोग, जिंदा लोग जो दुनिया से गुजर चुके हैं वो लोग नहीं, राइट, वो मिनकुम में नहीं आते, तुम्हारे दरमियान वाले उलुल अम्र में नहीं आते, वो तो गुजर चुके हैं दुनिया से, राइट, वो तो इस दुनिया से गुजर चुके हैं, वो हमारे दरमियान मौजूद भी थोड़ी है। तो अल्लाह ताला ने हुक्म किया है कि तुम उनकी अताअत करो जो तुम्हारे दरमियान मौजूद है, ठीक है ना। तो जब हम उनकी अताअत करते हैं ना जो हमारे दरमियान में मौजूद हैं, हम उनके साथ नत्थी होकर के रहते हैं, जिसका कि और दीगर मुकामात पे कुरान ने हुक्म दिया है, तब जो है ना शैतान के वसवसों से, शैतान की चालों से, शैतान के धोखों से फिर हम महफूज, ठीक है ना, हम महफूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ना ये शैतान और शेख, ठीक है ना, ये दो अल्फाज हैं, दोनों शीन से शुरू होते हैं, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होते हैं, दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होते हैं, ठीक है ना। ना शैतान खुदा है ना शेख खुदा है, राइट, ना शैतान जो है वो असल है माबूद है, ना शेख असल है ना शेख माबूद है, ठीक है ना। दोनों असबाब हैं, एक बुराई का सबब है, एक अच्छाई का सबब है, ठीक है ना। अगर बुराई के सबब से अपने आप को महफूज रखना है तो अल्लाह ताला ने अच्छाई के असबाब इस दुनिया में पैदा किए हैं, उनसे अपने आप को जोड़ना होगा, राइट, उनके साथ जुड़ करके रहना होगा। अगर उनसे जुड़ करके नहीं रहेंगे तो बुराई का सबब जो है वो आपके ऊपर गालिब आ जाएगा और आप जो है वो नहीं कर सकेंगे अपनी हिफाजत उससे, ठीक है। कुछ कमेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं तो यार जस्ट देख लेते हैं पहले, कि फिर शैतान को ना भुलाने के लिए कुछ तदाबीर या एफर्ट लगाना होता है, या शेख के साथ नस्बत बनाकर रखने में शैतान को याद रखने की जरूरत नहीं होती है। मतलब शैतान को अगर याद रखना भी पड़ता है तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा इवेंट पे उसे याद रखना है। मेरे ख्याल में आप अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला बात की समझ अता फरमाए तो फिर ये सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। वैसे कल साजिद ने काफी तफसील से एक मिसाल देकर के इस बात को समझाया था कि जो ख्यालात आते हैं ना कि जी मुझे शेख से राबता करने की क्या जरूरत है, या शेख से क्यों राबता करता हूँ, कि ये तो यानी इखलास के खिलाफ है और ये तो मैं अल्लाह की खातिर नहीं कर रहा। तो ऐसे मौकों के ऊपर शेख से पूछना होता है कि जी मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है, क्या ये सही ख्याल है, ठीक है। तो वो फिर उसके बाद हमारी तंबीह फरमा देते हैं कि नहीं, आपका ख्याल गलत है, ठीक है। तो यानी ये कोई किताब में कोई ऐसी लिस्ट नहीं है ना जो मैं आपको यानी पढ़ करके बता दूं कि जी इस ऐसे ऐसे मौकों पे शेख से पूछना होता है। लेकिन जो मशाइख ने हमें मामूलात बताए हैं ना, ठीक है, हम उन मामूलात पे अगर अमल कर लें ना, सारे मसले हल हो जाएंगे, ठीक है ना। उन मामूलात के अंदर आपता शेख का भी मामूल है, उन मामूलात के अंदर मुराकबे का भी मामूल है, राइट, उनके अंदर कुरान का भी मामूल है। फिर उन्होंने हमें कुरान सीखने के भी मेहनत के ऊपर लगाया हुआ होता है, राइट, कुरान की अरबी भी सीखे, कुरान की तफसीर की क्लासेस भी लें, ठीक है ना। तो उन्होंने जो चीजें हमें बिल्कुल प्लेन ब्लैक एंड व्हाइट में करके बताई हुई होती है ना, अगर हम उनके ऊपर अमल कर लेना, तो फिर ये कोई हमें बैठ के शैतान का मुराकबा करने की जरूरत नहीं है कि शैतान आ रहा है मेरे ऊपर हमला कर रहा है और फिर मैं उससे बचने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर उसके बाद ये सारे मुराकबे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। उनके बताए हुए जो चंद मामूलात है ना, जो चंद उन्होंने हमें काम लगाए हुए हैं, वो हम करना शुरू कर दें, बस अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब वो करते ही नहीं है, ठीक है। अब जो है वो खाम खा जो है वो हम फिर वो इंटेलेक्चुअल और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के सवाल करते हैं। Do we only need to beware from Shaitan? What about the people in our life who want to harm us? जो लोग हमारे जिंदगी में होते हैं ना, तो वो भी तो शैतान ही होते हैं ना, जो हमें हमारे ईमान को खराब करना चाहते हैं और हमें ठीक है। तो आपके सवाल के जवाब ये है कि we have to beware of the jinn shayateen as well as the ins shayateen, right? इंसान शयातीन के, ठीक है। तो ऐसा कोई आपको ये नहीं कह रहा कि जी इंसानों की तरफ से जो है आप बिल्कुल बेपरवाह हो जाएं और फिर आप सिर्फ सिर्फ जो है वो उस जिन शैतान की फिक्र करना शुरू कर दें। आउज़ुबिल्लाह पढ़ने के अलावा और क्या करना चाहिए? अभी जो इतनी सारी बात बताई है वो करना चाहिए, ठीक है। इस्लाही ताल्लुक बनाना चाहिए और जो है वो अपने मामला में जो है वो पूछ करके चलना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट मामला होते हैं, बड़े मामला होते हैं, जैसे औलाद की तरबियत एक बहुत बड़ा मामला है, और घर के अंदर जो हमारे बुरे हालात चल रहे होते हैं तो उसके अंदर पूछ करके सीख करके कदम उठाना, और उसी तरह से दीन के इल्म के बारे में जो है वो पूछ करके कि मुझे कैसे दीन का इल्म हासिल करना चाहिए, कौन सा दीन का इल्म हासिल करना चाहिए, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं हमारी जिंदगी के, ठीक है। तो इन इम्पोर्टेंट इश्यूज के अंदर हमें पूछ के चलना चाहिए। और अगर आप थ्योरेटिकली सीखना चाहें, थ्योरेटिकली के भी कैसे करना चाहिए, ठीक है ना, यानी किन किन मामलात में जो है वो पूछना चाहिए, तो उसके लिए एक रिसोर्स जो हमारे पास है ना, ठीक है, एक रिसोर्स जिसके जरिए से हम यानी जिनसे हम सीख सकते हैं कि भाई कैसे शैतान से बचना है, ठीक है, तो वो है सहाबाए कराम के जिंदगी के अहवाल, ठीक है ना, सहाबाए कराम की जिंदगी के अहवाल। क्योंकि सहाबाए कराम जो है ना वो इस प्रोटेक्टिव सिस्टम में रहते थे, ठीक है। सहाबाए कराम जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ उनका जो है ना ये दीन सीखने का प्रोसेस मुस्तकिल चलता रहता था, ठीक है। तो सहाबाए कराम जिस तरीके से अपने जिंदगी के मामलात में नबी अलैहिस्सलाम से आकर के सवाल किया करते थे ना, तो हमें एग्जैक्टली उन्हीं की सुन्नत पे अमल करना है, राइट। राइट, हमें उन्हीं की सुन्नतों पे अमल करना है, हमें उन्हीं के तरीके के मुताबिक जो है ना वो अपनी जिंदगी गुजारनी है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ थ्योरेटिकल एग्जाम्पल्स चाहिए तो उसके लिए बेहतरीन जो जो है ना वो हमारे पास रिसोर्स वो सहाबा इकराम की जिंदगी है। ठीक है, घर के लोगों पर शैतान होता है जो लोगों के जरिए घर के मामलात खराब कर देता है। उनमें एक दो लोग खास नजर आ रहे होते हैं कि ये शैतानी काम कर रहे हैं, तो उनके साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए? जिंदा नेक लोगों की पैरवी करना, इस पॉइंट को थोड़ा सा और समझा दें प्लीज। अच्छा, ये घर के अंदर जो कुछ लोग होते हैं जो जरा ज्यादा शैतानी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनसे निपटने के लिए यानी डिपेंड करता है ना कि आप किन लोगों की बात कर रही हैं, और देखें ये तो हर घर की अलग अलग तफसीलात होती है। हो सकता है आप किसी को समझ रही हैं कि वो बहुत शैतानी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जो है ना बेचारे अपनी आदत से मजबूर है, ठीक है ना, उनकी उठानी इस तरीके से हुई है कि बस वो यानी उनकी ये बैड हैबिट्स बनी हुई है कि उन्होंने जो है ना वो हर चीज के अंदर टांग अड़ानी होती है, और ठीक है, तो डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा इस किस्म की बुराई का सबब बन रहा है। हो सकता है कि वो आदतन बस कुछ ऐसे काम कर रहे हो जो कि आपको बहुत ही ज्यादा बुरे लग रहे हो, ठीक है, हो सकता है कि उनकी इस्लाह भी जो है वो मुमकिन हो, ठीक है, किसी अच्छे तरीके से उनके साथ जो है ना वो आप अगर डील करें तो वो अपनी इस बुराई से बाहर आ जाए। हो सकता है कि आपकी भी ऐसी कोई इश्यूज हो कि जिन इश्यूज के रिएक्शन के तौर पर जो है ना वो आपके दुश्मन बने हुए हो, तो अगर आपके वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाए तो उनकी वो दुश्मनी भी जो है वो फिर खत्म हो जाएगी। देखिए जैसे कि कुरान के अंदर हमें समझाया गया ना कि भाई आप जो है वो क्या है वो आयत के क्या वलीयुन हमीम, आपका जो है वो गहरा दोस्त बन जाएगा अगर आप उसके साथ जो है वो अच्छे से मामला करेंगे, ठीक है, तो ऐसे लोग भी होते हैं कि उनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ मामला करने से जो है ना फिर वो आपके गहरे दोस्त बन जाते हैं, ठीक है, तो घर के अंदर इस तरह के लोग भी मौजूद हो सकते हैं और उस तरह के भी हो सकते हैं कि जिनके साथ प्यार मोहब्बत से मामला करना जो है वो कोई कोई असर नहीं रखता उनके ऊपर, ठीक है, तो हाउ डू यू डिसाइड कि जो अगला बंदा है जो आपके लिए तकलीफ का सबब बन रहा है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है, तो उसके लिए तो फिर यानी एक एक्टिव मशवरे की जरूरत होती है ना, ठीक है, एक किसी क्लास के अंदर या किसी किताब के अंदर आपको इस तरह का एक उसूली मशवरा नहीं दिया जा सकता कि आप उनके अंदर ये जो है वो डायग्नोस्टिक्स रन करें उनके ऊपर, है ये ब्लड टेस्ट करवाएं, ब्लड टेस्ट के अंदर अगर जो है वो सोडियम ज्यादा आता है और क्लोरीन कम आता है और पोटेशियम जरा ज्यादा आता है तो आप उस शख्स के साथ जो है ना वो प्यार मोहब्बत वाला मामला करें, और अगर जो है ना वो उसका सोडियम कम आता है पोटेशियम ज्यादा आता है और ये कम आती है तो उसको फिर आप ना शैतान समझना शुरू कर दें, ऐसा कोई टेस्ट तो नहीं है ना, ठीक है ना, तो ये तो यानी तफसील के साथ अभी बात करनी पड़ती है ना, तो इसी वजह से ना ये जैसे कि इन्होंने प्राइवेटली सवाल किया था कि जिंदा लोगों की पैरवी करना, जिंदा लोगों से जो है वो अपने यानी मशवरे का ताल्लुक रखना, ठीक है ना, वो इसीलिए है ना कि भाई आपके जिंदगी में जो मामला चल रहे हैं तो आपको किताबों के अंदर कोई ऐसे हतमी उसूल नहीं मिलेंगे कि जिनकी बुनियाद पर जो है वो आप अपने जिंदगी के ऑन गोइंग उसूलों को हल कर सकें, ठीक है ना, तो इसके लिए अल्लाह ताला ने जिंदा इंसानों का सिस्टम बनाया ना जो कि आपके मुआशरे में मौजूद होते हैं, दुनिया में इस वक्त मौजूद होते हैं, उनसे अपने हालात को डिस्कस करना होता है और उनके फिर दिए हुए मशवरों के ऊपर अमल करना होता है, ठीक है। ससुराल के लोगों के साथ खासकर, हाँ तो ससुराल तो जाहिर है फिर वो तो यानी अब देखिए ससुराल बुरा है ये तो एक उसूल बना हुआ है ना दुनिया के अंदर, लेकिन इस उसूल के अंदर एक एक और भी तो फिर उसूल होता है ना इसके, भाई मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं ससुराल बुरा है, जैसे कल क्या हुआ था किसने वो कौन से मामू की बात हो रही थी हैदराबाद में, क्या दज्जाल मामू या शैतान मामू क्या था, कौन था वो आसिम साहब आपने बताया था ना जिन मामू, हाँ तो ये जिन मामू का मतलब क्या है कि ये जिन मामू कौन कहता है, क्या वो जिसका भाई होता है वो अपने भाई को जो है वो जिन कहती है, राइट, अपने भाई को तो कोई जिन नहीं कहेगा ना, ठीक है ना, जिन मामू तो वही कहेगा ना जो कि यानी बच्चों के मामू को बुरा समझता हो, ठीक है, यानी ससुराल वालों को, ठीक है ना? तो ससुराल वालों को जो बुरा समझता है तो वही फिर उनको जिन बोलेगा ना, ठीक है? और जो जो है वो अच्छा समझता है अपने और अपने घर वालों को, तो कहेगा चंदा मामू, हमारे यहाँ तो चंदा मामू है, ठीक है ना? तो अब ये जो एक मिजाज होता है ना कि जी मैं और मुझसे ताल्लुक रखने वाले सारे लोग जो हैं वो अच्छे हैं, और वो और उससे ताल्लुक रखने वाले सारे लोग बुरे हैं, यही तो शैतान का सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ा तो खैर नहीं, ये तो शैतान का एक बड़ा रोल होता है, बड़ा वार होता है, ठीक है ना? अपनी सारी बुराइयों को छुपा देता है और दूसरों की सारी अच्छाइयों को छुपा देता है, और उनकी सारी बुराइयों को जो है वो बहुत मैग्निफाई करके प्रेजेंट करता है, ठीक है? तो अब हाउ डू यू डिसाइड कि जी आपके ससुराल के अंदर वाकई जो है वो बुराइयां हैं और आपके अंदर वाकई सारी की सारी अच्छाइयां हैं, ठीक है ना? तो इसके लिए आपको कोई किताबी हल तो नहीं दिया जा सकता ना, इसलिए अल्लाह ताला ने शेख का सिस्टम बनाया है। ये सहाबा इकराम जो है ना, ये नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो उनका ताल्लुक था ना, ये शेख वाला ताल्लुक था। सहाबा इकराम मुरीद होते थे, राइट, सालिक होते थे, और नबी अलैहिस्सलाम जो है वो शेख होते थे, पीर होते थे, उस्ताद होते थे, ठीक है ना? हमारे जो इंडिया पाकिस्तान के मुआशरे में इन चीजों को जो है ना बहुत ज्यादा स्टिग्मेटाइज कर दिया गया है ना कि जी ये तो पीर साहब जो हैं, ये तो जो है बस वो, यानी बिदतें और मुशरिकाना काम करने के लिए खाली पीर साहब होते हैं, और पीर साहब जो है उन्होंने तो लोगों को जो है वो अपना यानी चेला बनाया हुआ होता है, और ये बनाया हुआ होता है, वो बनाया होता है, इस किस्म की, ठीक है ना? तो इस तरह से स्टिग्मेटाइज कर देने से मसले तो हल नहीं होते ना भाई। आपने पूरी की पूरी जो नबी अलैहिस्सलाम का उस्वाए हसना हसना है, राइट, पूरा का पूरा जो मदीना है मुनव्वरा का जो मॉडल था, आप उसको उठा करके जो है वो डस्टबिन में तो नहीं फेंक सकते, नाउज बिल्ला है कि जी उसके बगैर जो है वो आप जिंदगी गुजारना शुरू कर दें। आपकी जिंदगी में कोई शेख ही ना हो, आपकी जिंदगी में कोई पीर ही ना हो, आपकी जिंदगी में कोई उस्ताद ही ना हो, जिससे कि आप अपने जाती मामला को डिस्कस करके अपनी जिंदगी के इंपॉर्टेंट फैसले कर सकें सिर्फ किताबों की बुनियाद पर, ठीक है? बताया था ना कि जब आप किताब पढ़ते हैं तो शैतान जो होता है वो सोने नहीं चला जाता कि हाँ जी ये मेरे कलूला का वक्त आ गया है, अब इन्होंने किताब उठा के पढ़नी शुरू कर दी है, हदीस की किताब पढ़ रहे हैं जी, अब जो है वो तफसीर की किताब पढ़ रहे हैं, अब चलो मैं तो जाऊं छुट्टी के ऊपर, अब मैं जाकर के अपने दोस्तों से मिलकर के आता हूँ, नहीं, ठीक है ना? जिस वक्त आप किताब पढ़ रहे होते हैं ना, शैतान आपके जहन में ख्यालात उस वक्त भी डाल रहा होता है, वसवसे उस वक्त भी डाल रहा होता है, किताब में कुछ लिखा होता है वो उसका कोई और ही मानी बना करके आपके दिमाग में डाल रहा होता है, ठीक है ना? इसी वजह से तो किताब पढ़ने से तो कोई, राइट, ठीक है, असल में तो उस्ताद होता है, उस्ताद, राइट। एक जो पुराने लोग हैं उनको ये जुमला पता होगा, लेकिन नए लोगों के लिए हमारे शेख साहब एक बहुत जबरदस्त जुमला कहते हैं, और उसकी हकीकत का से कोई इनकार नहीं कर सकता। इतना जबरदस्त जुमला फरमाते हैं कि अगर उस्ताद, ठीक है ना, किताब पढ़ाने वाला उस्ताद अगर मुसलमान हो, यानी पक्का मोमिन हो, अच्छा मुसलमान हो, तो वो बाइबल पढ़ाते हुए भी अपने तालिबे इल्म को मुसलमान बना सकता है, बाइबल पढ़ा करके भी वो अपने तालिबे इल्म को मुसलमान बना सकता है अगर उस्ताद पक्का मुसलमान है, ठीक है? किताब इंजील है जिसके अंदर अब उन्होंने झूठ भर दिए सारे के सारे, राइट, इल्ला माशा अल्लाह, लेकिन उस्ताद अच्छा है, ठीक है, ईमान वाला है। इसके बरक्स अगर उस्ताद काफिर हो, मुशरिक हो, ईसाई हो, तो वो कुरान पढ़ा करके भी अपने तालिबे इल्म को काफिर बना सकता है। कैसे बनाएगा? कुरान पढ़ा करके कैसे बनाएगा? वो कुरान के अंदर जो है ना, वो उसके सामने जो है वो ऐसी बातें रखेगा कि जिसको कि तालिबे इल्म समझ नहीं सकेगा, और वो ये कहेगा कि देखो कुरान के अंदर ये अजीब बात लिखी हुई है, मेरे तो समझ में नहीं आ रही है, ऐसे क्यों लिखा हुआ है, और फलानी जगह पे ये लिखा हुआ था और फलानी जगह पर ये लिखा हुआ था, भाई ये तो मेरे समझ में नहीं आ रही है बात की, ये अल्लाह की किताब अगर है तो फिर उसके अंदर इतनी जो है वो नाउज बिल्ला बज़ाहिर तजाद क्यों नजर आ रहा है? वो तो नहीं बोलेगा बज़ाहिर तजाद, ये तो हम बोल रहे हैं ना तजाद बज़ाहिर, वो तो बोलेगा ये तजाद कहाँ से आ गया इस अल्लाह की किताब के अंदर, तो तालिबे इल्म जो है वो उसके अंदर कुरान के बारे में शक आ जाएगा, राइट? कुरान के अंदर से वो ऐसी ऐसी चीजें निकाल करके तालिबे इल्म के सामने रखेगा कि जिसके अंदर से एक नेगेटिव बात निकलती हो, ठीक है ना? तो तालिबे इल्म कुरान पढ़ रहा है लेकिन उस्ताद चूंकि काफिर है, तो ये तालिबे इल्म कुरान पढ़ने के बावजूद काफिर बन करके निकलेगा वहां से, ठीक है? क्योंकि उस्ताद है ना, वो उसकी सोचों को चैनल कर रहा है, उस्ताद तालिब इल्म की सोचों को बाकायदा मूव करता है, चैनल करता है, राइट, गाइड करता है सोचों को। तो शैतान भी जो होता है ना, ये भी उस्ताद ही का रोल प्ले कर रहा होता है। हम पढ़ रहे हैं किताब, राइट, सेल्फ मुताले के तौर पर किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन शैतान साहब जो है वो हमारे उस्ताद बने हुए हैं, वो हमारे जहन के ख्यालात से मुस्तकिल खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो उसने हमें कोई अच्छी किताब पढ़ करके कोई मोमिन को थोड़ी बनने देना है, उसने तो फिर काफिर ही बनाना है ना हमें, ठीक है। इत्फा बिल्लती ही अहसन फ़ैदल्लती बैनका व बैनहु अदावा कन्नहु वलीयुन हमीम, ठीक। कि जो बहुत सारे लोग आपके घराने में ऐसे होते हैं कि जिनके साथ आप, अगर आप उनकी बुराई को अच्छाई से रिटर्न करें, तो उनके और उनके दरमियान जो अदावत थी, जो आपके और उनके दरमियान जो अदावत थी ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं वो ऐसे तब्दील हो जाएगी कि वो गोया के आपके बहुत ही वार्म फ्रेंड्स बन जाएंगे, ठीक है, बहुत ही गहरे दोस्त बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब घर के अंदर कौन जो है वो ऐसा है और कौन जो है वो वैसा है, तो ये तो फिर लाइव मशवरे से ही पता लगता है ना कि जी क्या करना चाहिए किसके साथ। ससुराल के लोग मेरे साथ, मैं यहाँ हूँ, वो शैतानी काम वहां करते हैं, जेठ के घर बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वो फोन पर मुझसे अच्छे बात करते हैं, तो मैं किस अंदाज में उनसे बात करूं, सिर्फ नरमी या कुछ सख्ती भी। अब ये जो आपका जाती एक मसला है, तो ये जाती मसला जो है वो क्लासरूम के अंदर नहीं डिस्कस होता ना, ठीक है। तो इस वजह से इसको जो है ना, वो आपने अलग से व्हाट्सएप के ऊपर रापता करके जो है वो डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, ये यानी क्लासरूम सेटिंग के अंदर, सेमिनार सेटिंग के अंदर, यहाँ पे यानी जो उमूमी बातें होती हैं, उसूली बातें होती हैं, उनको जो है वो पढ़ाया जाता है, उन्हीं के मुताबिक सवाल किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको चाहिए कि आप अलग से रापता करें। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप नहीं हैं, तो उसमें आप जिन्होंने भी आपको रेकमेंड किया इस क्लास की तरफ, तो उनसे पूछें कि जी व्हाट्सएप ग्रुप पे फिर मैं कैसे शामिल होती हूँ, और फिर उसके अंदर जो जो नंबर है जिसका, तो वहाँ पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्या अरब में भी शेख का सिलसिला मौजूद है? क्योंकि कहा जाता है कि ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में है। आप देख नहीं रहे अरब मुल्कों का क्या हाल है, वहाँ पे जो मामला चल रहे हैं, अल्लाह माफ करे, तो ऐसे ही हो गए हैं कि नहीं जी, हर जगह शेख का सिलसिला मौजूद है, और हाँ कुछ जगहों पर ज्यादा है, कुछ जगहों पर कम है, ठीक है। तो जाहिर है कि जहाँ पर जो है वो ये सिलसिला है अभी भी, तो फिर भी वहाँ पर मामला अभी भी थोड़े बेहतर हैं, ठीक है। लेकिन ये इसका ताल्लुक तो कुरान से है भाई, अब अरब मुल्क हो या रशिया हो या अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, ठीक है। तो कुरान तो अल्लाह की किताब है ना, वो तो ये तो नहीं है कि ये अरब अगर ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये दीन का हिस्सा है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो ये दीन का हिस्सा नहीं है, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। कुरान और हदीस की बुनियाद पे दीन बनाया जाता है या किसी इलाके के लोगों की बुनियाद पे दीन बनाया जाता है? जी हमारे मशाइख का तो बहुत ही क्लियर मामला है इसमें, कि जिसका कोई शेख नहीं होता उसका शेख शैतान होता है, ठीक है। अच्छा, तो कान शैतान लिल इंसान खजूरा, इसके बाद अल्लाह ताला ने शैतान को डिफाइन भी कर दिया कि नहीं, बल्कि एक आयत तो कुरान के बारे में है कि काल रसूल या रब्बी इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। तो इसके तहत खुलासे तफसीर के अंदर लिखते हैं कि उस दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक ताला से काफिरों की शिकायत के तौर पर कहेंगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी इस कौम ने इस कुरान को जो कि वाजिबुल अमल था बिल्कुल नजरअंदाज कर रखा था, महजूरा बना के रखा हुआ था, और इल्तिफात ही ना करते थे। अमल तो दरकिनार, मतलब ये कि खुद कुफार भी अपनी जलालत का इकरार करेंगे और रसूल भी शहादत देंगे, ठीक है। कि क्यामत के दिन अल्लाह ताला ना कुफार के बारे में अल्लाह ताला से शिकायत करेंगे कि इन्होंने, कि मेरी इस कौम, ठीक है ना, क्योंकि लफ्ज क्या है, इन्ना कौमी, मेरी कौम ने, ठीक है। अब काफिर जो है, इससे क्या पता लगता है कि काफिर, अगर यहाँ पर सिर्फ काफिर मुराद है, ठीक है, तो काफिर भी नबी अलैहिस्सलाम ही की कौम है, ठीक है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कुफार भी शामिल है। कैसे? वो इस तरह से कि उम्मत दो किस्म की होती है, एक होती है उम्मत दावत, दूसरी होती है उम्मत इजाबत। ठीक है, इजाबत वो होती है कि जिन्होंने नबी रसूलुल्लाह की दावत के ऊपर लब्बैक कह दिया होता है, जवाब दे दिया होता है पॉजिटिवली, तो वो ईमान वाले बन जाते हैं, तो उनको उम्मत इजाबत कहते हैं। ठीक है, लेकिन उम्मत दावत वो होती है कि जिन्होंने लब्बैक नहीं कहा होता अभी, ठीक है, अभी उन्होंने लब्बैक नहीं कहा है, उनको अभी दावत देनी है, ठीक है, दीन की तरफ, तो वो काफिर है। लेकिन नबी रसूलुल्लाह की उम्मत में इस वजह से, इस अंदाज से वो भी शामिल है। ठीक है, तो इसकी जो तफसीर है वो तो यही बनती है। अलबत्ता जो उलमा ने इसकी मजीद ये भी तशरीह करी है कि इवन कोई मुसलमान है, ईमान वाला है, जो नबी रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही देता है, लेकिन कुरान से वो हिदायत नहीं लेता, कुरान को उसने, जैसे हमने वो ताक पे सजा के रखा हुआ होता है, या बस शादी के दिन जो है वो शादी के अंदर हम हर किस्म की जो है वो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की नऊज़ बिल्लाह धज्जियां बिखेर रहे होते हैं, लेकिन जब वो दुल्हा दुल्हन जो है वो रुख्सत हो रहे होते हैं, तो भाग करके जो है ना वो किसी बच्चे से कुरान मंगवाते हैं, राइट, और उस कुरान का साया करते हैं उसके दुल्हा दुल्हन के सर के ऊपर, राइट, और फिर उस साए के अंदर उनको रुख्सत करते हैं। ठीक है ना, तो अब ये कितना, यानी यानी क्या 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 अल्फाज हम इस्तेमाल करें इसको डिस्क्राइब करने के लिए, भाई कुरान के साथ खेल, ये खेल जो है ना, ये कम लफ्ज लगता है, नाउज बिल्ला कुरान को हम कितना जलील कर रहे होते हैं, करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुरान को क्या हम जलील करेंगे, वो तो अल्लाह का कलाम है, हम तो नहीं जलील कर सकते उसको, लेकिन हम कोशिश कर रहे होते हैं कि यानी कितना कितना यानी किसी चीज के साथ आप मजाक कर सकते हैं, राइट, तो ये तो हम करते हैं ना, ये तो हमारे अपने घरानों के अंदर ये तमाशे होते हैं ना। ठीक है, तो इस वजह से अगर कोई मुसलमान भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही भी दे रहा है, लेकिन वो कुरान के साथ इस तरह का रवैया कर रहा है, तो फिर उलमा फरमाते हैं कि ये आयत उन लोगों के ऊपर भी अप्लाई होती है, ठीक है, सिर्फ काफिरों के ऊपर अप्लाई नहीं होती। तो कयामत के दिन तो फिर अपनी इन इन गुनाहों का इकरार करना पड़ेगा, और फिर साथ साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहादत देंगे इस तरह से कह करके, कपौली ताला व जेना बिका अला हाउलाई शहीदा, कि हम आपको लेकर के आएंगे इन लोगों के ऊपर गवाही देने वाले के तौर पर, शहीद के तौर पर लेकर के आएंगे हम। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम फिर शहादत देंगे, और शहादत फिर मुख्तलिफ अंदाज से ये वाले अल्फाज भी इस्तेमाल करेंगे, दूसरे अल्फाज भी हो सकता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस्तेमाल करें ना मानने वालों के ऊपर शहादत देने के लिए। और सबूत जुर्म की यही दो सूरतें मुताद हैं, मुताद हैं, ठीक है, यानी किसी का जुर्म साबित करने के लिए यही दो तरीके होते हैं ना, या तो वो खुद एग्री कर ले, एडमिट कर ले, ठीक है, अपने गुनाह को, अपनी जुर्म को, या ये कि कोई दूसरा आकर के शहादत दे कि हाँ इसने जुर्म किया था। ठीक है, तो कयामत के अंदर ये दोनों सूरतें इस्तेमाल की जाएंगी मुजरिमों के जुर्म को साबित करने के लिए, इकरार और शहादत, और दोनों के इज्तिमा से ये सबूत और भी मुअक्कद हो जाएगा और सदायाब होंगे। ठीक है ना, अब देखिए अल्लाह ताला जो है ना, उनको जरूरत तो नहीं है ये सारे काम करने की, भाई जो कुछ किया है आपने उसके ऊपर नामे अमाल सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा फरिश्ते गवाही दे देते और मामला खत्म हो जाता, उनको उठा करके फेंक देते जहन्नुम के अंदर, राइट, नहीं, अल्लाह ताला ने ना ये पूरा का पूरा ये सिलसिला बनाया है, ये पूरा निजाम बनाया, ये सब कुछ होगा, यानी उनसे खुद गवाही दिलवाई जाएगी, उनके हाथ पैरों से गवाही दिलवाई जाएगी, सब कुछ होगा, और फिर रसूल से भी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी गवाही दिलवाई जाएगी। ठीक है, और हर उम्मत के रसूल जो है वो अपनी उम्मत के ऊपर फिर इसी तरीके से शाहिद होंगे, बल्कि नहीं, बल्कि पिछली उम्मतों के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम की जो उम्मती होंगे वो गवाही देंगे। ठीक है, और हम इसी तरह मुजरिम लोगों में से हर नबी के दुश्मन बनाते रहते हैं। आखिरी आयत में क्या फरमाते हैं, भाई दुश्मनी का तज़किरा, वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिम, और इसी तरीके से कज़ालिका, इसी तरह हमने बनाया हर नबी के लिए दुश्मन, अदू, दुश्मन, मिनल मुजरिमीन, मुजरिमों में से। ठीक है, वकफा बिरब्बिका हादियं व नसीरा, और तो इसके खुलासा तस्वीर में लिखते हैं कि हम इसी तरह मुजरिम लोगों में से हर नबी के दुश्मन बनाते रहते हैं, यानी ये लोग जो इनकार कुरान करके आपकी मुखालफत कर रहे हैं, यानी कुरान क्या है, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से बताया हुआ कलाम कि जी ये जो मैं तुम्हारे सामने पढ़ रहा हूँ ये कुरान है। ठीक है, तो कुरान की इनकार करने का मतलब कि इस बात नबी अलैहिस्सलाम की इस बात का इनकार करना कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये अल्लाह का कलाम है, यानी असल में नबी का इनकार करना। कोई नई बात नहीं जिसका गम किया जाए और जिसको हिदायत देना मंजूर हो उसकी हिदायत करने को, और जो हिदायत से महरूम है उसके मुकाबले में आपकी मदद करने को आपका रब काफी है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ना कुरान में हमें याद दहानियां करवाते हैं, ठीक है ना, ताकि हम भूल ना जाएं, हम जो है वो गाफिल ना हो जाएं। ठीक है, सिर्फ अपनी याद दहानी नहीं करवाते बल्कि दुश्मनों की भी याद दहानी करवाते। ठीक है, तो अल्लाह ताला फिर हमें बताते हैं कि देखो सबसे बेहतरीन हमारे जो बंदे हैं वो हमारे नबी हैं, राइट। नबी के जैसा इखलाक तो किसी में नहीं हो सकता ना, राइट। नबी से जैसा के जैसा कामिल इंसान, मोहब्बत रखने वाला इंसान, राइट, और यानी सेंसिटिव इंसान, नरम तबीयत इंसान कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन हर नबी के लिए इस दुनिया के अंदर दुश्मन होते हैं, यानी परफेक्ट इंसानों के लिए भी दुनिया में दुश्मन होते हैं। परफेक्ट इंसान जो होते हैं वो भी हर एक की आंखों के तारे नहीं होते हैं। बात समझ आ रही है, राइट। नबी जो होता है ना वो हर एक की आंखों का तारा नहीं होता, राइट। बहुत सो की होता भी है और बहुत सो की आंखों का जो है ना वो एक यानी एक क्या कहते हैं रुकावट आंखों के अंदर भी बन जाता है, राइट। उन लोगों को एक आंख नहीं भाता, अल्लाह ताला के ये बेहतरीन बंदा, राइट, उनको एक आंख नहीं भाता। तो जब नबी जो है वो उसके इतने सारे दुश्मन दुनिया के अंदर होते हैं, तो तुम कैसे जो है वो ये तखय्युल कर सकते हो, ये तसव्वुर कर सकते हो कि तुम्हारे दुनिया में दुश्मन नहीं होंगे, राइट। हर कोई तुम्हारा दोस्त होना चाहिए या हर कोई तुम्हारा दोस्त है। कुछ लोग इस मुगालते में रहते हैं कि सब उनके दोस्त हैं, राइट, और कुछ लोग इस मुगालते में रहते हैं कि सब उनके दोस्त बन जाएं, राइट, सब उनके दोस्त बन जाएं। तो अब वो सबको दोस्त बनाने के चक्कर में क्या क्या करते हैं, अपनी भी रोटियां डुबोते हैं, अपने यानी जो उनको नहीं करना चाहिए था वो भी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हत्ता के यहां तक आगे बढ़ जाते हैं लोगों को दोस्त बनाने के चक्कर में, लोगों को अपने कैंप में लाने के चक्कर में, कि वो दीन को मस्क करके, दीन को कॉम्प्रोमाइज करके लोगों को दोस्त बनाना शुरू कर देते हैं जिसकी उनको इजाजत नहीं थी। यही हमें हमें इस चीज की तो इख्तियार नहीं दिया गया कि भाई लोगों को दीन में लाने की खातिर तुम दीनी की खिलाफ वर्जी शुरू कर दो, राइट। जैसे कि आप दीन की तबलीग करना शुरू हो जाए, है ना, महरम लड़कियों के साथ, है ना, चाहे आप चैटिंग पे करें, चाहे आप उनके साथ जो है वो आमने सामने बैठ करके सेमिनार करें, राइट, अच्छे अच्छे जो है वो बयान करें अल्लाह की विलायत के ऊपर और क़यामत के ऊपर और आखिरत के ऊपर और एक से एक जो है वो दीन के ऊपर जो है वो आप माशाल्लाह लेक्चर्स दे रहे हैं और सामने जो है वो खूबसूरत खूबसूरत जो है वो खवातीन बैठी हुई हैं। और खूबसूरती का महवर क्या चीज़ होती है एक औरत के अंदर, जो असल खूबसूरती, जो असल उसको जुदा करती है दूसरी औरतों से, क्या चीज, क्या क्या चीज होती है औरत के अंदर, जरा बताएं ना, औरतें खवातीन जो एक औरत को दूसरे औरत से जुदा करती है, क्या चीज होती है वो जिसके अंदर खूबसूरती होती है एक औरत की, क्या होता है, चेहरा होता है, चेहरा होता है, असल चीज तो होती ही चेहरा है, राइट। तो चेहरा खोल करके जो है वो स्टूडेंट सामने बैठी हुई है, मुरीद ने सामने बैठी हुई है, राइट, वाह वाह करने वाली सामने बैठी हुई है और लेक्चर किस चीज के ऊपर हो रहा है, अल्लाह की विलायत के ऊपर लेक्चर हो रहा है ना, दीन के ऊपर लेक्चर हो रहा है, फिका के ऊपर लेक्चर हो रहा है। ठीक है, तो फिर ये शैतान साहब उस वक्त जो है वो छुट्टी पे गए हुए होते हैं क्या, क्या क्या ख्याल है आपका, शैतान साहब जो है उस वक्त उन्होंने क्या कोई वो लीव लीव ऑफ एब्सेंस लीव ही होती है, पेड लीव है, कि मुझे तनख्वाह मिलती रहेगी, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, तो क्योंकि दीन की बातें हो रही हैं तो यहाँ पर तो मेरा काम नहीं है, तो क्या है ये, राइट? दोस्त बनाने की कोशिश की जा रही है, दीन की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, लेकिन दीन ही को तब्दील करके, दीन ही की खिलाफ वर्जी करके, और इसके ऊपर इसरार भी किया जा रहा है। एक बात भी याद, एक और भी बात याद रखें, इसरार कि हाँ भाई हमने ऐसे ही काम करना है, ऐसे ही काम करना है। क्यों, ये बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि एक्सेप्शनली, एज एन एक्सेप्शन, कभी जो है वो उलमाए हक, मशाइखे हक भी इस किस्म की सिचुएशन में या तो फंस जाते हैं, ठीक है, क्योंकि खातून बेपर्दा आई हुई है फतवा पूछने के लिए, और वो ऐसी जो है वो खराट किस्म की है कि उन्होंने करना ही नहीं है पर्दा, राइट? तो अब बेचारे ये खुद अपनी हिफाजत करके, अपनी निगाहों की हिफाजत करके, राइट, अपने आप को बचा करके जो है वो उनके सवाल का जवाब दे रहे होते हैं, उनके साथ बात करनी पड़ जाती है, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन बड़े बड़े उलमा को ऐसी ऐसी पड़ती है, खुसूसन जो पार्लियामेंट के अंदर काम करते हैं, राइट, जो कि इकामत दीन का काम कर रहे होते हैं, तो उनको तो और भी ज्यादा इस किस्म की सिचुएशंस का जो है सामना पड़ता है, जहां पे बिल्कुल बेपर्दा खातून होती हैं पार्लियामेंट के अंदर, असेंबलीज के अंदर, राइट। बड़े बड़े जो जो अकाबरीन उलमा होते हैं, जिन्होंने के दूसरे लोगों से जो है वो इंटरेक्शन करना होता है, उनको ऐसी सिचुएशंस पड़ती हैं, लेकिन वो इसको रूल नहीं बनाते, एक्सेप्शन बनाते हैं कि हाँ भाई हम फंस गए हैं सिचुएशन के अंदर, या मजबूरन हमें ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जिसको, जो लोग इसको रूल बना लेते हैं कि नहीं भाई हमने तो ऐसे ही दीन का काम करना है, बेपरदगी के साथ ही दीन का काम करना है, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी ना तो उसका कोई यानी फायदा है, बल्कि उसका नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। आप कभी किसी को, आप लोगों को ऐसे दोस्त बना ही नहीं सकते कि आप दीन को कॉम्प्रोमाइज करके, उसूलों को कॉम्प्रोमाइज करके जो है ना वो दीन का काम करना शुरू कर दें, ठीक है। तो जब नबियों के दुश्मन इस दुनिया में मौजूद है ना, तो हमें भी जो है ना वो इस बात पे सेटल होना पड़ेगा कि हर एक को दोस्त नहीं बनाया जा सकता। ये हमारा काम नहीं है लोगों को हिदायत देना, हमारा काम तो है जो अल्लाह ताला ने हमें दीन का इल्म पहुंचवाया है अपने बड़ों के जरिए से, हम उसको बगैर मस्क किए हुए, बगैर खराब किए हुए आगे लोगों तक पहुंचाएं। अब किसने उसको मानना है, किसने उसको नहीं मानना है, ये हमारे हमारे काम, हमारे करने का काम नहीं है। इसी वजह से हमारे जो अकाबरीन है ना, ये जो अर्तुगरल के ऊपर कल से बात हो रही है, हमारे अकाबरीन ड्रामे सीरियल के जरिए से, फिल्मों के जरिए से, राइट, ये दीन की तबलीग के बिल्कुल कायल नहीं है, ठीक है ना, कि उसके अंदर जो है वो यानी एक से एक जो है वो तमाशे, राइट। पर्दा तो उसके अंदर सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज होता है, टीवी के अंदर कौन सा पर्दा, राइट, कहाँ पे नजरों की हिफाजत होगी, कहाँ पे जो है वो क्या क्या करेंगे आप उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से दीन को खराब करके जो है ना वो दीन की तबलीग नहीं होती है, हमारे यहाँ ये काम बिल्कुल भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप बोले कि जी उनके यहाँ जो है वो होता है तो वो क्या पागल है, वो क्या ये है, भाई उनके अलग हालात है, या तो वो दीन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो वो अपना हिसाब देंगे अल्लाह ताला के सामने, या ये कि उनके हालात इतने बुरे हैं, इतने बुरे रह चुके हैं कि उनके सामने इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। तुर्की का जो मुल्क है ना, ठीक है, तुर्की के अंदर जो ये ड्रामे आ रहे हैं ना, तो तुर्की के हालात आपको पता है कुछ कि वहां पे क्या हालात थे, राइट, क्या किस यानी नहज पे ये तुर्की तुर्क कौम पहुंची थी, राइट। कुरान खत्म, अजान खत्म, राइट, अरबी जुबान खत्म, और वहां पर जो फुहश तरीन फिल्में होती है ना वेस्टर्न यूरोप की, बिल्कुल बेलिबास, बिल्कुल बगैर कपड़ों के तुर्की के मुल्क के अंदर वो फिल्में जो हैं पब्लिक बसों के अंदर चलाई जाती थी, वो वाली फिल्में पाकिस्तान और इंडिया में, इंडिया मुसलमान मुल्क तो नहीं है ना, तो इंडियन यानी हिंदू मेजोरिटी का मुल्क है, इंडिया में आप तसव्वुर कर सकते हैं इस तरीके से, राइट, बेलिबास फिल्में पब्लिक बसों के अंदर चलाई जाए, हर एक को लाजमन देखना है इन चीजों को, ठीक है ना। तो तुर्की जिसको क्या हम इतना बड़ा इस्लामी मुल्क अब नजर आ रहा है, वो उसके अंदर जो कुछ तब्दीलियां बहुत बहुत अच्छी तब्दीलियां आई हैं, लेकिन ये तुर्की इन हालात से गुजरा है पिछले 60-70 साल के अंदर, राइट। तो अगर वो ड्रामे के जरिए से दीन की तब्दील अपने लोगों के दरमियान करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो हम पर बिल्कुल अप्लाई नहीं होती है, हम नहीं कर सकते उनकी एग्जाम्पल को फॉलो, ठीक है ना। उनको उनके हाल पर छोड़ें, उनका मामला उनके अल्लाह ताला के साथ है, ठीक है। दीन को उधर से लेने की कोशिश ना करें, दीन को जो है वो अपने उलमा और मशाइख से लेने की कोशिश करें, जिनसे अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, हमें उनकी कदर करने की किसकी जरूरत है, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हो गई इस یعنی خلاصہ تفسیر کے تحت، اور باقی انشاءاللہ مارک مسائل ہم اگلی کلاس پڑھیں گے. آپ کے جو میسیجز ہیں وہ دیکھ کر کے کلاس ختم کرتے ہیں. اعتراض کرنے والے نے کہا کہ پچھلے نبیوں کی امت یہود و نصارہ دنیا میں کامیاب، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کا کیا، کی امت کا کیا حل ہے اب؟ یعنی اب جو دنیا میں کامیاب نظر آتے ہیں وہ پچھلی امتوں کے لوگ ہیں، یہود و نصارہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا کیا حل ہے اب، کیا حال ہے اب؟ اچھا، الطغرل ڈرامہ دیکھنے کے کیا دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ ہم نہیں دیکھتے، جسٹ فور نالج پوچھ رہے ہیں. الطغرل ڈرامہ دکھانے کا مقصد یہی ہے جو شیطان کے مقاصد آپ کو بھی پیچھے سکرائب کیا ہے نا، کہ اس نے تو کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو نقصان پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ موسیقی اور شراب کے ذریعے سے پہنچائے، چاہے وہ کرکٹ کے گیم کے ذریعے سے پہنچائے، چاہے وہ دینی رمضان ٹرانسمیشن کے ذریعے سے پہنچائے، چاہے جو ہے وہ الطغرل ڈرامے کے ذریعے سے پہنچائے، ٹھیک ہے. اور الطغرل ڈرامہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو بالکل شرابی کبابی ہیں وہ الطغرل ڈرامہ نہیں دیکھیں گے. الطغرل ڈرامہ کن کے اوپر زیادہ اثر کرے گا؟ جو اپنے اندر دینی جذبہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ دینی جذبہ جو ہوتا ہے نا، وہ جذبہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے، اور نفس جو ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، خواہشات بہت مضبوط ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، پھر وہ الطغرل ڈرامہ کی طرف پھر بہت مائل ہوتے ہیں، اس قسم کے جتنے بھی ڈرامے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ پھر چونکہ ایسے لوگ بہت اٹریکٹڈ ہوتے ہیں نا، تو ان لوگوں کو پھر ان ڈراموں کے ذریعے سے پھنسایا جاتا ہے شیطان کی جال کے اندر، ٹھیک ہے. تو اس یہ جو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں نا، یہ بیسیکلی یہ بھی شیطان کا ایک جال ہے اور کچھ نہیں ہے. اصل مقصد جو ہے وہ پھنسانا ہے آپ کو. اچھا، آپ کا یہ سوال ذرا میرے ابھی ذہن میں کلیئر نہیں ہو رہا ہے، تو اس پر ایسے ایک منٹ. ایک اور ایڈرینالائن افیکٹ، وہ ایڈرینالائن افیکٹ جو ہوتا ہے بس وہی کہ جی آپ کے جذبات جو ہیں وہ بڑے وہ ہوتے ہیں، فائر اپ ہو جاتے ہیں اس قسم کے ڈرامے دیکھ کر کے، لیکن کرنا کرانا آپ نے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور بد نظری کا گناہ جو ہے وہ آپ کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے، اچھے اچھے پیارے پیارے چہرے جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کے دماغ کے اندر جو ہے وہ سما رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو مرد ہوتے ہیں ان کے دماغوں کے اندر وہ پیارے پیارے چہرے سمارے ہوتے ہیں ترکی خواتین کے، رائٹ. اور جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے دماغوں میں یہ سمارے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو اتنی پیاری جو ہے وہ مسلمان عورت ہے، میں کیوں نہیں ہوں اتنی پیاری، ہے نا، تو مجھے بھی تو اتنا پیارا ہونا چاہیے نا، تو اگر میں نہیں ہوں تو ہونے کی کوشش کرو، رائٹ. پھر اپنے اوپر لیپتی ہیں اس قسم کی چیزیں، اور اگر لیپنے سے بھی اتنی پیاری نہ بنے تو پھر اس کے بعد جو ہے ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو بہت سارے افیکٹس ہیں اس کے، شیطان بہت سارے، یعنی ایک تیر سے کئی شکار کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نا یہ طریقہ ہے ہی نہیں دین کی تبلیغ کرنے کا، ٹھیک ہے. ہر سال رمضان میں کرکٹ میچز ہوتے ہیں، اس سال میچز نہیں ہے، تو رمضان کی عبادت ختم کرنے کے لیے یہ ڈرامہ. جی نہیں، یہ ڈرامے تو پچھلے سالوں میں بھی چل رہے تھے اس طرح کے. ہاں اس سال یہ اور بات ہے کہ ہاں کرکٹ میچز جو ہیں وہ ایک ڈسٹریکشن تھوڑی کم ہو گئی ہے، ان کی غلطی ہو گئی ان سے، ٹھیک ہے، کہ یہ ڈسٹریکشن جو ہے وہ کم کرنے کا سبب بن گئے. تو اب جو ہے ظاہر اس کو کوئی حل تو کرنا ہے نا، آلٹرنیٹو تو پیش کرنا ہے نا، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس رمضان میں سنا ہے کہ ان ڈراموں کی ظاہر مانگ جو ہے وہ ہمیشہ سے زیادہ ہے اس وقت. تو بہرحال یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ جی پچھلے نبیوں کی امت دنیا میں کامیاب ہے، تو بھائی دنیا کی کامیابی اگر ہم کو چاہیے تو پھر بن جائیں ان کی طرح یہود نصارہ بن جائیں، ٹھیک ہے، دنیا کی کامیابی مل جائے گی، رائٹ. لیکن ہمارا مقصد اگر دنیا کی کامیابی ہے ہی نہیں، ہمارا مقصد آخرت کی کامیابی ہے، تو پھر تو مدینہ جو مکہ مکرمہ میں جو مسلمان تھے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کی پہلی شہیدہ، ان کو کون سی دنیا ملی تھی، رائٹ. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہو گئے احد کے میدان میں، ان کو کون سی دنیا ملی، کون سی انہوں نے کامیابیاں دیکھی، رائٹ. اور جو کتنے سارے صحابہ شہید ہوئے، کتنے سارے صحابہ دنیا سے چلے گئے، شہید ہوئے بغیر بھی جو چلے گئے، ٹھیک ہے، تو ان کو کون سی دنیا کے اندر کامیابی ملی، دنیا کے اندر حکومت ملی، انہوں نے کون سے دن دیکھے انہوں نے، ٹھیک ہے. تو اگر کسی کا ذہن کی سوچ ہی جو ہے وہ دنیا کی کامیابی کے گرد گھومتی ہے، تو ایسے بندے سے پھر آپ کیا کریں گے، مطلب کیا آپ اس کے ساتھ بحث کر سکتے ہیں یا ان کے ساتھ، تو اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں ایسے لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. بس ان کے لیے دعا کریں. اور تبلیغ کا جو اصل طریقہ ہوتا ہے نا، اس اصل طریقے को इस्तेमाल करने की कोशिश करें, अगर आप कुछ दवा भी करना चाह रहे हैं उनके बारे में, वो असल तरीका ये है कि जो अपने ऊपर वाले लोग होते हैं ना, जो अपने मशाइख होते हैं, ठीक है ना, उनके साथ इनको किसी न किसी तरह से जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है ना। यही तबलीग का असल तरीका होता है, जैसे कि सहाबा कराम यही काम किया करते थे, ठीक है। कुछ अपने लेवल पे थोड़ी बहुत बात कर लिया करते थे, लेकिन फिर असल में पकड़ करके लेकर के आते थे ऊपर से जोड़ने के लिए, ठीक है। यही काम जो है वो हमारे बड़ों ने भी यही काम किया है, और हमारा भी यही काम होना चाहिए, यही लायहे अमल होना चाहिए, ठीक है ना। इन लोगों के साथ जो है वो इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। नंबर वन दुआ, नंबर टू दवा, विच मीन्स के अपने बड़ों से इनको जोड़ने की कोशिश करना, दैट्स इट। उसके अलावा फिर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये क्लासेस में लाना, राइट, ये भी वही चीज है ना कि जी उनको टीचर से जोड़ने की कोशिश करना, ठीक है। तो बस अल्लाह ताला ने इतना आसान किया हुआ है, बस मैसेजेस आगे फॉरवर्ड कर दें अपनी तरफ, तो दो चार लाइनें ज्यादा से ज्यादा लिख दें, ठीक है, कि भाई मुझे ये फायदा हुआ, मैंने ये देखा, मैंने ये समझा, कुछ जो है वो समरी वगैरह टाइप की बना करके उनको भेज दें कि भाई हाँ इस आज जो है वो ये वाली बातें हुई, हमने तो कभी ऐसी बातें नहीं सुनी थी, हमें तो पता नहीं था हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। इस तरह से थोड़ा बहुत जो है वो अपने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख दें उसके साथ, ये आपकी दावत हो गई, ठीक है ना। बस अल्लाह खैर सल्लाह, हिदायत तो वैसे भी अल्लाह के हाथ में ही है, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।